ओम शांति। ये बहुत सुंदर सभा है, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ सब प्रकार के बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, 60 साल के भी और 60 दिन के भी और 6 दिन के भी। क्लास एक ही है, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, कोई अंतर नहीं। और ड्रेस भी हम सबकी यूनिफॉर्म एक है, हैं जी, इसमें कोई अंतर नहीं। तो हम सब क्लास स्टूडेंट्स हैं। जैसे आज प्यारे बाबा ने कहा, स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान, पिता बन के, शिक्षक बन के, सतगुरु बन के, हैं जी, हमें पालना भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं। और हम चाहे ना चाहे सबको अच्छी तरह से साफ करके, धुलाई करके वापस ले जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, खेल के आते हैं, सब मिट्टी मिट्टी होती है, माँ बाप कहते जाओ साफ होके आओ, कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। तो माता पिता क्या करेंगे, प्यार से समझाएंगे, जा बच्चा जा, साफ होके आ जाओ। फिर वो बच्चा जिद करता है, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तो क्या करेगा, क्या होगा उस बच्चे के साथ, माताएं बताओ। अब छोड़ देंगे, रहो गंदे के गंदे रहो, छोड़ देंगे, आखिर तो बच्चा अपना है ना, तो क्या करेंगे, हाँ, जबरदस्ती उस बच्चे को उठा के बाथरूम ले जाएंगे और उसको साफ करके, साफ कपड़ा पहना के फिर ले आएंगे। भले वो बच्चा थोड़ा रोता है, लेकिन साफ होना जरूरी है। तो हम सभी तपस्वी बाबा के बच्चे आए हैं बाबा के घर में, और ऐसा समय आए हैं जैसे जनवरी मास बाबा का मास है, पुण्य मास है, अव्यक्त मास है, तो जून महीना मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो इस महायज्ञ की माता थी, माँ थी, जिन्होंने पालना की इस यज्ञ की, उनके पुण्य स्मृति मास में आप सब आए हैं। तो ज़रूर माँ अपने बच्चों को पालना देंगे, शक्तिशाली बनाएगी, सिर्फ प्यार वाली पालना नहीं है पर शक्तिशाली पालना। कल आप सबने काफ़ी अच्छा अनुभव किया होगा, लेकिन ये एक दिन, दो दिन, चार दिन की बात नहीं है। जिस दिन से आप ज्ञान में चलना शुरू किया, हमारी सफाई शुरू हो गई। तपस्या किसको कहते हैं, तपस्या आग है, फायर, तपस्या माना फायर है, आग है। वो आग, आग चार प्रकार से काम करती है। एक है आग में जो भी आप डाल दो जल जाती है, कोई भी चीज़ आप डालते हैं वो जल के खत्म हो जाती है, इसका रूप ही खत्म हो जाती है। और दूसरा आग में जो डालते हैं वो परिवर्तित होती है, हैं जी, परिवर्तित होते हैं। और तीसरी बात है, आग में जो भी डाला जाता है वो शुद्ध होती है, आग को शुद्धिकरण के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे सीता मैया अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए आग से गुजरना पड़ा। सुना है ना, आग की अग्नि परीक्षा दी, क्योंकि इससे पवित्र आत्मा हो जाती है, हाँ जी। और चौथी बात है, आग से कोई चीज स्ट्रांग बन जाती, मजबूत बन जाती है। जैसे भट्टी में आप डालते हैं ना वो ईंट, कच्ची मिट्टी आप डाल दो आग में, वो पक पक के अच्छा बन जाता है। ईंट जो है मजबूत इमारत बनाने में काम आता है, मजबूत बन जाती है। और ये चार बातें जब हम खुद से लगाएंगे, क्या हम इतने साल से ज्ञान योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, क्या ये चार बातें हैं? मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, मेरा कर्म, मेरे दृष्टि, मेरे वृत्ति शक्तिशाली है, और मैं आत्मा के मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति शुद्ध है, पवित्र है। और तीसरी बात, क्या मेरे अंदर जो पहली बातें थी वो परिवर्तन हुई है, कि पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं, सिर्फ फर्क कितना कि हम ज्ञान योग कर रहे हैं। पहले मंदिर जाया करते थे, कथा आदि सुना करते थे, अब हम मुरली सुनते हैं, सेंटर जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी तो वही आदतें हैं हमारे, वही हमारे जो बातें पहले थी वो सारी बातें हैं, ऐसा तो नहीं। और चौथी बात, क्या मेरे पूर्व जन्म के इतने सारे विकर्म आत्मा में पड़ा है, क्या मैं महसूस करती हूँ धीरे धीरे थोड़ा 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 करके खत्म होता जा रहा, यह महसूसता है? यदि ये चार बातें आप महसूस करते हैं तो आप सफल तपस्वी हैं। यदि चार बातों में हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, चाहे 50 साल हो या सिर्फ साल बीते हैं, पर मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और दूसरी बात, अब तपस्या क्या है, आग है वो हमने समझा, पर सफल किसको कहते हैं? अभी किसी बात में हमने जीत प्राप्त की, कहते हैं ये सफलता हुई, हमने जीता। कोई बात हम कंप्लीट करते हैं, पूर्ण रूप से उसको पूरा करते हैं, कहते हैं सफल हुआ, पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। किसी चीज का फल हमें अच्छा मिलता है, एक्चुअली सफल तो रिजल्ट है ना, तो हमें कोई बात का जो फल है, रिजल्ट है, वो अच्छी मिली तो सफल हुआ। तो जब से मैं ज्ञान में चलना शुरू किया, हम ये देखें कि हमारे, आप क्या भी कर रहे हो, सारे दिन में क्या भी करते हैं, एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में आप क्या महसूस करते हो वो इम्पोर्टेंट है। आपने ज्ञान किया, योग किया, भट्टी की, वो किया, सेवा किया, फलाना डिगना, घर संभाला, बच्चे संभाला, ऑफिस गए, ये किया, जो भी आपने किया, दिन के अंत में आपके दिल में आप क्या महसूस कर रहे हो वो है रिजल्ट। वो है सफलता। आप सारे दिन में बहुत कुछ भी करके दिन के अंत में आपके मन में उदास है, दुख है, कहीं न कहीं जरा सा दर्द है, कहीं न कहीं जरा सा असंतुष्टि है, सफल नहीं है। अब सारा दिन भट्टी में बैठे, अब सोने के लिए जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, सोने के पहले सारा दिन का जो आप मन के सामने जैसे चित्र फिल्म चलती है, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि है मन में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो उसने ऐसा क्यों मेरे साथ किया, मैंने पता नहीं ऐसा क्यों कह दिया, मुझसे ऐसी गलती नहीं होना चाहिए था। इस तरह की कोई भी बात मन को चुभता है, हम सफल नहीं है। तो हमने जो किया सारे दिन में, इसका तो कोई फल नतीजा क्या निकला? दुखी होके सो रहे हैं आप, आपके मन में रिग्रेट है, पश्चाताप है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, प्रश्नों के साथ आप सो रहे हैं, नाराजगी लेकर के सो रहे हैं, असंतुष्टि लेके सो रहे हैं, आपका मन, आपका दिल अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो आप सारा दिन ये सब कुछ करके क्या फायदा? नथिंग, हाथ में तो कुछ भी नहीं मिला, प्राप्ति क्या हुआ? जीरो। सफलता उसे कहते हैं हम क्या करते हैं, कितना करते हैं बात नहीं है, किस भाव से करते हैं उससे प्राप्ति हमने क्या लिया। क्या प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं ये याद रख कर करना बहुत जरूरी है, तब तो कुछ प्राप्ति हो। जैसे तपस्या आग है, ऐसे विकार के विकार, सारे विकार आग है, काम भी आग है, काम की अग्नि बाबा कहते हैं ना, क्रोध भी अग्नि है, ईर्ष्या बहुत बड़ा अग्नि है, आपने बहुत सेवा कर ली, आप इसलिए इसे सेवा कर रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, देखो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो इनको इनका बड़ा मान मिल रहा है, बहन जी इनकी तारीफ करती हैं, हम भी ऐसे करेंगे, हमारी भी तारीफ होंगे, हम कोई कम थोड़ा ही हैं जी, तो हमने कर किया, आप उनसे बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया, पर आपने ये सेवा ईर्ष्या के अग्नि में जल के किया, या किसी को जलाने के लिए किया, या किसी इंसान को देखकर उसको नीचे करके हम आगे करने के लिए किया, अब भगवान के लिए नहीं किया, अपने पुण्य का खाता जमा करने अर्थ नहीं किया, कर्म क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस भाव से किया आपने उसकी प्राप्ति है। योग में बैठे क्या मैं दिखाने के लिए बैठी हूं, ये सब बैठे हैं कोई क्या कहे, देखो सब योग में बैठे हैं, घूम रहा है तो चलो भाई चुपचाप बैठ जाओ, इसलिए बैठे, या कहीं बाहर बरसात हो रहा है कहीं जाने का वो नहीं, चलो बैठ जाओ यही बैठ जाओ, बैठ गए, बैठे तो हैं, पर्पस क्या है? लक्ष्य के बिना लक्षण धारण नहीं हो सकते, तो योग में बैठने के लिए भी तो लक्ष्य तो चाहिए ना, एवरी टाइम, हर बार जब हम बैठते हैं, बेशक बाबा हम सब बच्चों को लक्ष्य तो शुरुआत में दे दिए हुए हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कदम हमें लक्ष्य लेना होगा, एवरी स्टेप, चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो चढ़ाई है ना, स्टेप स्टेप, पैर पग रखना पड़ता है ना, तो हमारी कॉन्शियस माइंड, हमारा जो मन के लक्ष्य, कहाँ, किस भाव से, किस एम से, किस लक्ष्य से हम कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। इतना सब कुछ भी करके हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम तृप्त नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, चेहरा ऐसा ही उतरा हुआ है, हवा उड़ रहे हैं, कोई तपस्या का फायदा नहीं, योग का कोई फायदा नहीं। मैं सीधी सी बात बताती हूँ, हमने लौकिक जो दुनिया है, हम वो सब छोड़ करके हम बाबा के ज्ञान में आए क्यों, खुश रहने के लिए? हालांकि दुनिया में आप खुश तो थे, ऐसे नहीं कि आप खुश नहीं थे, खैर थोड़ा बहुत खुशी, थोड़ी बहुत ऐसे भी खुशी भी थी और दुख भी था, दोनों मिक्स मिक्स था, पर बाबा के पास हम क्यों आए? जैसे आज प्यारे बाबा ने कहा कि हम इस ज्ञान में इसलिए आए, योग तपस्वी जीवन इसलिए चुना, ताकि हमें वो सुख मिले, वो प्यार मिले, वो आनंद मिले जो परमात्म है, ईश्वरीय है, जो सारे कल्प में फिर कभी ना मिल सके। सत्युग में भी आनंद नहीं है, वो प्यार परमात्म प्यार नहीं है, परमात्म सुख नहीं है, वो सिर्फ अब मिलेगा। अब आप अपने दिल में देखो, क्या वो प्यार है आपके दिल में, जो परमात्म निस्वार्थ, जो संपूर्ण, इतना शुद्ध, रूहानी, अनकंडीशनल है, वो प्यार मेरे दिल में भरा है, या फिर भी कहीं ना कहीं देहधारियों के तरफ मेरा मन चला जाता है? फिर यदि चला गया, हमने देखा कि ये प्यार क्यों नहीं दे रहा, मेरे बच्चे मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे फ्रेंड, मेरा वो, मेरा फलाना डिगना हमसे क्यों नहीं करते, प्यार क्यों नहीं मिलता उनसे, हम अपेक्षा करते हैं, हम तपस्वी नहीं हैं। है थोड़ा थोड़ा अपेक्षा अपने लौकिक परिवार से, चलो लौकिक परिवार से ना सही, अलौकिक परिवार में भी तो प्यार की जरूरत महसूस करते ना, दीदी हमें थोड़ी प्यार कर ले, या आने वाले जो स्टूडेंट्स है उनमें आपस में थोड़ा प्यार हमको मिल जाए। है तो देहधारी कोई भी है, कोई भी इंसान इंसान ही है, हाँ बेशक वो महान होंगे, ऊंच होंगे, पर इस समय जो हमें आनंद, खुशी, प्यार, वो परमात्म वाला अनुभव करने के लिए हम आए हैं। जो तपस्या हम अभी करते हैं वो इस प्राप्ति के लिए है। अब ये प्राप्ति जब हम करेंगे तो अंतर्मन तृप्त हो जाएगा, फिर किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी, आपका मन करेगा ही नहीं, आपकी बुद्धि जाएगी नहीं, किसी तरफ आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। अब आप बैठे हैं, योग में भी बैठे हैं तो इधर उधर देखते, कोई आ रहा है तो हम पूरा सिर घुमा के देखते, अच्छा ये आ रहा है, पता नहीं अब तक कहाँ चला गया था, अभी तो इतना देर हो गया, वहां यहां घूम के आए होंगे, अच्छा वो आ रहा, वो कहाँ गया होगा, क्यों गया होगा, लेट क्यों, इधर क्यों, ये सब क्यों सोच रहे हैं आप, सोचते हैं ना, तो मन चला जाता है लोगों के प्रति, क्योंकि मन बेकार पड़ा हुआ है, आपने मन को कोई लक्ष्य नहीं दिया, मन में पहले से जो भटकने का जो संस्कार है वो तो है, एकाग्र नहीं है मन, क्योंकि सब तरफ का, जैसे आज प्यारे बाबा ने कहा, बाबा से सारे संबंधों का सुख अनुभव करने का है, तो वो यदि आनंद मन में हम प्राप्त कर रहे हैं तो मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, बुद्धि का भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैं तो बिजी हूं ये अनुभव करने में। कोई आ रहा कोई जा रहा, मुझे कोई लेना देना ही नहीं। जैसे आप कोई दुकान चला रहे हैं, बहुत सारे ग्राहक है आपका, वो भर रहा है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ गला भर रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है लोग, तो आप इधर उधर देखेंगे कौन आया कौन गया। उसके लिए दूसरे आदमी रखा हुआ है, भाई तुम देख लो, पर मेरे तो पैसा गिनने में मैं बिजी हूं ना, है कि नहीं। अब इतना सारा पैसा आपके सामने पड़ा, आप इधर उधर क्यों देखेंगे। आप इधर उधर देख रहे इसका मतलब ये खाली है, कुछ नहीं है, कुछ आएगा तब तो गिनेंगे, हैं जी। तपस्या की निशानी है एकाग्रचित, ध्यान से सुनेंगे, एक है एकाग्र मन, एक है एकाग्रचित, दोनों बातें बहुत अंतर है। मन का काम है संकल्प करना, बहुत सारे संकल्प हम करते रहते हैं, योग में भी बैठते हैं हम, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं ना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, संकल्प करते हैं ना, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की मैं संतान हूँ, सारी शक्तियाँ मुझ पे आ रहा है, पता नहीं बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, पर अनुभव होता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। अब परसों मेरे से जिसने गलत व्यवहार किया वो मेरे सामने आ जाए तो हमको थोड़ा मन शांत होगा, हमको तुरंत मन डिस्टर्ब हो जाएगा, गुस्सा आ जाए, अच्छा ये आ गया, अच्छा तो अभी सर्वशक्तिवान शांत स्वरूप परम धाम सब गया, अब मेरे को उस व्यक्ति पर उसने जो जो किया, उसने सारे उसके कर्मों की कहानी मेरे सामने आ जाती है, उसने ये किया, ऐसा मेरे साथ बोला, ऐसा मेरे साथ किया, वो व्यक्ति मेरे को कितना दुख दिया, कितना रुलाया उसने। फिर योग में हम ये भी कहते, बाबा इसको भी ऐसा हो, थोड़ा तो हो, हाँ उसको भी थोड़ा ऐसा हो, पता तो चले उसने मेरे साथ क्या किया। फिर हम समझाते भी अपने आप को, चलो जाने दो उसका कर्म है, फिर हम कहते मैं शांत स्वरूप आत्मा। अच्छा ये कोई तपस्या तो हुई नहीं, मन तो डिस्टर्ब तो हुआ ना, मन डिस्टर्ब हुआ ना, मन एकाग्र नहीं है। कोई कैसा भी व्यक्ति है, मेरा मन चित, अच्छा मन तो संकल्प कर रहा है लेकिन अभी डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्योंकि व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के जो निशान है ना, वो चित्त में बैठा है। जैसे कोई पाइप होता है, आप रोज इस पाइप का इस्तेमाल करते हैं, इसमें पानी आता रहता, पर कुछ समय के बाद क्या है, उसके पाइप के जो अंदर की दीवार है ना, उसमें कचरा चिपक जाता है और धीरे 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 करके वो पाइप में पानी जब खुल के आ रहा था पहले, अब कम आने लगता है, समझ में आ रहा है ना। अब हमको लगता है ये क्या हो गई, पाइप के अंदर से सारा कचरा भर गया, वो चिपक जाता है, पानी तो अभी भी आ रहा है पर कम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो इसके अंदर के जो वॉल है इसमें कचरा चिपक गया। अभी मन में तो संकल्प अच्छे अच्छे चल तो रहा है, पर इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती, क्योंकि कई बातें हमारे जन्म से लेकर, बल्कि मैं कहूं कि पिछले का भी, वो चित्त में जैसे ये चिपक गया है। हम जो योग तपस्या करते हैं सर्वशक्तिवान। दुनिया में कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में तेज वो तेज नहीं है सूर्य वाला, पर उस परमात्मा में इतनी शक्ति और ऐसी शक्ति है जो कई जन्मों के हमारे आत्मा में, मन चित्त में, हमारे वृत्ति में जो गंदगी भरी है उसको साफ कर सके। तो ऐसे परमात्मा के साथ जब हमारी बुद्धि लगती है, मन लगता है, तो वो चित्त के अंदर बहुत सारी गंदगी, किसी के जैसे कहते हैं ना, मेरे मन चित्त में भी नहीं था, अब मन में है, मन में किसी की बुराई अच्छाई की बात है तो चित्त में भी है। कई बार ऐसे कहते हैं मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी, मन में नहीं है, पता नहीं फिर भी क्यों होता है, मन में बात नहीं है मगर वो चित्त में वो चिपका पड़ा है, वो रजिस्टर हुआ है, उसका जो इम्प्रेशन है, उसका जो असर है वो उस चित्त में पड़ा हुआ है। तो जब तक उस चित्त को साफ नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तो मन में बार बार वो बात आएंगी ना, है जी। इसलिए तपस्या ये एक दो दिन करने वाली नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिंदगी भर जैसे हम रोज नहाते हैं, कोई थकता तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा आज तो संडे है, रविवार है, छुट्टी, भैया छोड़ो क्या नहाना है रोज, ऐसा तो नहीं करेंगे, बल्कि और अच्छा नहाएंगे क्योंकि संडे है, छुट्टी है। तो ये हर रोज का अभ्यास है कि हम अपने मन चित्त को साफ रखें। अब ऐसी कोई बात हो तो उसको जाने दे, मन में रखे ना। अब इसके लिए चाहिए ड्रामा का ज्ञान। अब किसी ने हमारे ऊपर, हमारे साथ कोई गलत भी किया, या हमारे साथ ऐसी बात हुआ है जीवन में, अपने अतीत में, कई बार वो सारी बातें मन को डिस्टर्ब करती है, मन को विचलित करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों, अरे कितना हमने विश्वास किया, ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग मेरे को समझते नहीं हैं, इस तरह की मन और छोटी-छोटी बातों में मन डिस्टर्ब होना। तो ये दो बात इससे सिद्ध होता, एक है मन और चित्त स्वच्छ नहीं है, दूसरी बात मन बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, इतना कच्चा है, आग में पका नहीं है, इसलिए हर छोटी-छोटी बात में मन हिल जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता। मन सुख अनुभव करने के लिए हम यहां आए हैं, पर अब ज्ञानी बनने के बाद भी हम दुख की अनुभूति करते हैं, लोगों से, बीती हुई हमारी जिंदगी से, कई बार हम अपने आप से भी दुखी हैं। तो दुख आत्मा अनुभव करती है तो ये तपस्या नहीं है, क्योंकि दुख आसुरी जीवन की प्रॉपर्टी है, ईश्वरीय जीवन की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद। जब हम ईश्वरीय जीवन में आए हैं तो जीवन दूसरा है, तो दुख कहां से आया? यदि हम दुख महसूस आत्मा करती है तो हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं लाल बत्ती में बैठे हैं, हम मन अपना चल रहा है, जैसे नहीं लौकिक में मंत्र बोलते रहते पर इधर उधर उनका ध्यान रहता है, बीच बीच में बोल भी देते, अरे घंटी क्यों नहीं उठाती, इतना बार फोन बज रहा है तो घंटी उठा, पूछ भी लेते खाना बना कि नहीं बना, अच्छा कौन डोरबेल बज, ये सब तरफ ध्यान रहता है और पूजा भी मंत्र भी बोल रहे होते हैं, तो हमारे भी यही हाल है। कुछ समय के बाद मन यूज्ड हो जाता है, मन आदी हो जाती है वो कमेंट्री बोलने का, आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा का बच्चा, ये मन बोल रहा है, पर फिर भी बुद्धि तो भटक रही है इधर उधर, ये क्या हुआ होगा, ये क्यों हुआ होगा, बहुत सारी बातें पिछले का आगे का आते रहते हैं। तो मन शुद्ध नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो कितने साल से हम योग लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, या किस क्वालिटी का योग हम लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? अब हम खुद अपना देख लें कि मेरा योग का जो क्वालिटी है, जिसे बहुत अच्छी प्राप्ति होनी चाहिए, इसका रिजल्ट जो है बेस्ट रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे मिल रहा? बताइए। इसमें बहुत सारे मिक्सचर, अमृत पान करने हम आए हैं, उस अमृत में कितना मिलावट है। आप दूध वाला आपको दूध दे जाएगा, शुरू शुरू में गाढ़ा गाढ़ा दूध दे रहा था, धीरे धीरे देख करके आपको लगता है इतना दूध पतला पतला होता जा रहा है। आप उसको कहते हैं, भाई तुम क्या करता है, तुम पतला दूध दे के जाता है, तुम पानी मिलाता है, बोलते कि नहीं बोलते? तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान अमृत दे रहा है जो सारे कल्प में 5000 साल में सिर्फ और सिर्फ संगम युग की इन घड़ियों के अलावा ये ज्ञान अमृत फिर कभी नहीं मिलने वाला, ये प्रेम का अमृत फिर कभी नहीं मिलने वाला, ये आनंद का अमृत फिर कभी नहीं मिलने वाला, ये पवित्र जीवन फिर कभी नहीं मिलेगा। और हम क्या ले रहे हैं? अब बताइए, क्या हम सफल योगी हैं कि आया राम गया राम, आए बैठे गए, फिर कल फिर आएंगे बस्ता लेके आएंगे, फिर लिख लिख के लिखेंगे, फिर जाएंगे। कुछ लोग तो वहीं छोड़ के जाते हैं सेंटर में, अपनी अपनी जगह होता है ना, अपना किताब वहीं छोड़ के जाते हैं, फिर कल लाके फिर लिखना होता है। हम लिख लिख के बहुत सारे किताबें बन गए हमारे, रखने के लिए घर में जगह भी नहीं है, पर मन आत्मा बुद्धि ने क्या प्राप्त किया, रिजल्ट क्या? क्या वो अमृत जो इतना शुद्ध पवित्र अनलिमिटेड है, जो जन्म जन्म का प्यास बुझाने वाला अमृत, उसका पान हम कर रहे हैं? कि अब तक किन्हीं बातों में पड़े हैं, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, ये तो जन्म जन्म यही तो करते आए, अब छोड़ो कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता, हमारे अतीत में क्या हुआ, अपने बच्चे ये क्यों, सब भूलो, ऐसा ही होंगे, पता है ऐसा ही सही है। इसको कहते ज्ञान। क्यों क्यों नहीं बोलो, जो हो रहा अच्छा की बात नहीं है, सही हो रहा। अच्छा और सही में फर्क है ना, यह है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा में कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं, अरे ऐसे ही लोग क्यों मिले, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्या क्या परिवार क्यों मिला, यही सही है। मेरे कर्म अनुसार, हाँ जी, हमें तो नहीं मालूम हमने पहले पिछले जन्मों में क्या क्या पापड़ बेल के आए हैं, मालूम है? तो जब इसका फल अब मिल रहा तो क्यों, क्या कर, सवाल क्यों उठ रहा है? जब हम फल को देखते हैं, आपको बीज का अंदाजा तो होगा ना, आम का फल देखेंगे तो बीज क्या होगा, बीज क्या होगा, आम का फल देखते हैं तो बीज क्या होगा, मिर्ची का फल देखते हैं तो बीज क्या होगा, आम का। तो आप अचानक देखते हैं मिर्ची मिर्ची है मेरे सारे आसपास, मिर्ची कहाँ से आ गया भैया? तो मिर्ची अचानक तो नहीं आएंगे, बीज तो आपने डाला है तब तो मिर्ची के सारे आए हैं। आपने अपने बीज डाला है तो खाओ मिर्ची। मिर्ची लगता है तो लगेगा, है ना? अपना आपने डाला है, आपने बीज डाला है। क्यों आया मिर्ची, क्यों आया? हम तो आम खाना है चाहते तो और है, पर कर्म जो किया है वो मिर्ची का किया है, तो आम का फल कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे? इसलिए जो है उस वो अच्छा है, वो अलग है पर सही है। जैसे कई बार बाबा ने मुरली में कहा है कि ड्रामा में जो है वो सही है, और बाद बाबा ने कहा कि ये ड्रामा स्वयं रचयिता परमात्मा को पसंद है, इसलिए आप बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। इसमें ना पसंद नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। इसलिए किसी भी, सबसे पहले किसी भी बात में प्लीज नाराज नहीं होना, मन को दुखी नहीं करना, तपस्या भंग होगा इससे। प्राप्ति मिलते भी जैसे थाली में है, आप खा नहीं पा रहे हैं तो क्या फायदा बताइए? बाबा ने इतना बहुत बड़ी थाली में सारे कटोरे में परोस के दिए हुए हैं, लड्डू हैं, गुलाब जामुन हैं, हाँ जी रसमलाई हैं, क्या मजेदार चीजें सारे परोस के दिए हैं, और हम उसको देख करके दुखी हैं क्योंकि हमको और याद आ रहा, खाया नहीं जा रहा, हाँ जी। इसलिए चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन चित्त में भी किसी की बात ना आए, यदि आए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा हुआ, यदि वो व्यक्ति ऐसा ना करता तो मुझे अपना जो स्वमान, अपनी शक्ति का अंदाजा ना होता। ये ऐसा हमारी जिंदगी में ना हुई होती बात तो मैं हिम्मत से आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव जो प्राप्ति क्यों हुआ, इसकी वजह है, उसको आप समझ करके आगे बढ़ो, उसी को आप हर्डल नहीं बनाओ, एक एक तपस्या में एक विघ्न रूप नहीं बना लो। क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हुआ? मन उदास है, मन दुखी है, मन डिप्रेस्ड है, हम उसको मुस्कुराते भी नहीं हैं कई बार ना। देखो अभी भी देखो आप लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या होने वाला। हाँ, खुश तो होना चाहिए ना, खुश होके बैठो, पर वो जो यू नो होना चाहिए वो चेहरे पर ही नहीं है, ऐसे डाउट है मन में, पता नहीं क्या हो गया। कोई ओम शांति भी बोलता है, अरे ओम शांति कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि, बोल दे आप भी प्यार से बोल लो, सामने वालों के मन में क्या भी हो उसका फल वो भोगेंगे, आप क्यों चिंतित हो रहे हो, आप क्यों डाउट से फिर सोचना शुरू, अच्छा इस कभी नहीं बोलने वाला आज क्यों बोला, कुछ तो है, क्या हुआ होगा, वो है, ये है, ये अच्छा आज सवेरे मुरली क्या था, वो गुम, एक घंटा अमृत वेला किया, मुरली सुना, वो सब गुम पानी में, गंगा में, वो क्यों बोला, वो रजिस्टर चित्त में एकदम प्रिंट है, तो दिन रात वो सोचेंगे क्या हुआ होगा, क्या अच्छा वो इसके साथ बैठ रहा तो शायद इसने कुछ बोला होगा, ये ऐसा अंदाजा लगा लगा के लगा लगा। अब बताइए आप ऐसे मन में योग में बैठेंगे, परमात्मा मिलन का अनुभव होगा? सच बताओ, बाबा देने के लिए खड़े हैं, मेरा बच्चा आएगा मैं भर भर के उस बच्चे को दूं, हमारी बुद्धि तो एंगेज है, मेरा बच्चा आएगा मैं फोन करके बात करूं, पर आपका फोन इतना एंगेज है तो मेरा बार बार लगाऊंगी, मेरा लगेगा आपको, आपका फोन लगेगा, आप तो अपने मन की बातों में लगे हुए हैं, क्यों है, क्या है, ऐसा है, वैसा है। इसलिए मन चित शांत। दो चार दिन पहले बाबा ने कहा मन शांत होगा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। मन शांत ही नहीं होगा, सुख नहीं प्राप्त करेंगे। बोलते रहो शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, शांत स्वरूप, अनुभव महसूस नहीं होगा। थाली में है पर खा नहीं पाएंगे, उसका टेस्ट, उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। हम बोल रहे हैं अच्छा थाली में रसमलाई है, वो है, समोसा है, बोल रहे हैं पर खाएंगे नहीं, इसका स्वाद नहीं लेंगे। तुम बोलते रहो, वो तो वहां है, मैं यहां हूं। तपस्या माना अनुभव, अनुभव भी गहरा। एक है ऐसा आम अनुभव, यदा कदा कभी कभार कुछ हो जाए। एक है इट्स अ डीप एक्सपीरियंस, एक बहुत गहरा ऐसा अनुभव जो मैं उठूं बैठूं कुछ और भी काम करूं, वो अनुभव मेरे साथ है। यू नो लाइक मैं उसको कैरी कर रही हूं अपने साथ, वो अनुभव को। वो अनुभव इतना शक्तिशाली है कि और बातों से वो मुझे सुरक्षित रखता है, मन को डिस्टर्ब होने से ये अनुभव मुझे सुरक्षित रखता है। यदि आत्मा एक गहरा अनुभव बाबा के साथ का नहीं किया है तो हर छोटी छोटी बात बाहर की जो है वो आत्मा पर असर कर जाता है। फिर छोटी छोटी बातों में मैं सारा दिन डिस्टर्ब ही होती रहूंगी, मन उलझता ही रहेगा, बुद्धि का विचलित होना ये होता रहेगा। हम योग में भी बैठो, भक्ति भी करो, कई लोग इतने उब जाते हैं, कहते चलो चेंज के लिए हम बोर हो गए हैं, चलो चेंज, मधुबन चलो भाई चेंज, भट्टी करो। अब कई भट्टी के लिए आए हैं, कई चेंज के लिए भी आए हैं। सही बात बोल रही हूं? कौन कौन है थोड़ा सा चेंज के लिए आए हैं, जरा हाथ खड़ा करें। भाई घर में बिजनेस में यही बातें सुन सुन के, बोल बोल के, देख देख के, थोड़ा चेंज, दो साल हम बैठे रहे तो चलो थोड़ा चेंज होगा, मधुबन जाएंगे थोड़ा चेंज होगा। चेंज के लिए कौन आए हैं? भट्टी के लिए कौन आए हैं? घूमने के लिए कौन आए हैं? हाँ थोड़ा घूम लेंगे मधुबन, यहाँ वहां थोड़ा घूम लेंगे। घूमने के लिए कौन आए? हाँ बसेस हम दे देंगे, आराम से घूम आओ, चाय टोली भी दे देंगे साथ में, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात थोड़ा ही है, अपना घर है। ये बात है। इसलिए मन और चित्त की शुद्धि और शक्तिशाली, ये दोनों बात बहुत जरूरी है। फिर देखना कोई भी बात मन को हिला नहीं सकता, कोई क्या भी व्यवहार करेगा, बाबा का जो अनुभव है, बाबा के साथ का शक्तियों का गुणों का जो अनुभव हमने किए हैं, शरीर से अतीत होने का आत्मस्वरूप, आत्मा के अपने आप का जो स्वरूप है, इसमें कितना आनंद है। यदि हमने वो अनुभव किया है तो कोई कितना भी कुछ कर ले मन पर कोई असर नहीं करेगा, बल्कि हमें दया आती है, बेचारे ये ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई अनुभव ही नहीं है, इनका व्यवहार ऐसा है, बेचारे उनके पास कोई गहरा ज्ञान का अनुभव नहीं है, योग का अनुभव नहीं है, बाबा के साथ का अनुभव नहीं है। तो ऐसे ही करेंगे ना, कलयुगी आसुरी दुनिया के जो संस्कार है अभी तक। योग से चित्त वृत्ति की शुद्धि होती है, ये शास्त्रों में भी कहा गया है, चित्त वृत्ति निरोध योग से। तो शिव बाबा जो हमें योग सिखला रहे हैं, जैसे आज बाबा ने कहा परमात्मा में पढ़ाते हैं, हमें राजयोग सिखला रहे हैं। ये योग कोई ऐसे वैसे नहीं है, इससे हमारे चित्त और वृत्ति जो हमारे सारे जीवन का जो एकदम एक सूक्ष्म चीज है हमारे व्यवहार के, हमारे सोच के भी, ये यदि शुद्ध हुआ, जैसे बाबा कहते वृत्ति से वाइब्रेशंस हम फैलाते हैं और वृत्ति से हमारी वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो जाते हैं, चाहे दूसरों ने अशांत वाइब्रेशन बनाया हो, दूसरों ने कैसा भी माहौल बनाया हो, पर मेरे अपनी मनोवृत्ति की इतनी शक्तिशाली वृत्ति है, इसमें दो कार्य होंगे। नंबर वन, एक तो वो वातावरण का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा, दूसरा मेरा जो अंदर का वाइब्रेशंस का वातावरण उन पर पड़ता है। चलो मेरा जो वाइब्रेशंस है वो दूसरों के ऊपर असर ना भी करे, कम से कम अपने आप को दूसरों के गलत वाइब्रेशन से अपने आप को बचाना जरूरी है ना। तो इसीलिए अपने वृत्ति और चित्त को शुद्ध रखना जरूरी है, ये तपस्या का मुख्य बात है। अपने चित्त और वृत्ति को शांत रखो, स्वच्छ रखो, कोई बात का असर होने नहीं देना। किसी बात का ध्यान से सुनेंगे, किसी बात का असर मन पर तब होता है जब उस बात को हम बार बार सोचते हैं। जब किसी बात को हम बार बार मन में दोहराते नहीं हैं, तो चित्त में रजिस्टर नहीं होगा, वो चिपक नहीं जाता, बात आई गई। पर हम बैठ के उसको सोचते हैं, बार बार मन में दोहराते, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो वो बैठ जाता है, वो बात गहराई में जा करके अपने जगह बना लेती है, फिर उसको वहां से निकालना पकड़ के बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए घुसने ही नहीं दो उसको। मन को हमें इतना सुरक्षित रखना है अपने चित्त को, कैसी बातें अंदर जाए ही ना, बाहर से बाहर, क्योंकि मेरा मन इतना शुद्ध है, पवित्र है, मैं अपने मन में सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं देना चाहिए, तब तो मन मंदिर बनेगा ना, नहीं तो बंदर के समान वो तो इधर उधर भटकता ही रहता है। तो मंदिर तब बनेगा जब वो मन शांत है, पवित्र है, शुद्ध है, ऐसी बातों के लिए हमें जगह ही नहीं है। ठीक है, और वैसे ये बहुत विस्तार सब्जेक्ट है, एक एक बात का भी बहुत बहुत विस्तार है, मैं ऐसे एक एक बात का विस्तार में तो नहीं जा रही हूँ, पर मैं थोड़ा थोड़ा मैं सिर्फ आप उसको मेंशन कर लेती हूँ। तीसरी बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारे आदतें हैं, जैसे हम लौकिक से भी हमारी आदतें है, जिसको आदत है, संस्कार है। अब तपस्या हमें क्यों करना है और सफल हम तपस्वी कब कहलाते हैं, जब उन आदत और संस्कारों पर जीत पाए। वो आदत कुछ भी होता हो, जो ईश्वरीय आदत जो बाबा ने हमें बताई है, जो ईश्वरीय संस्कार बाबा ने हमें बताई है, उस मुताबिक नहीं है हमारी जिंदगी, तो फिर वो आसुरी संस्कार है। और कैसा पता चलेगा ये आसुरी संस्कार है, ये दैवी संस्कार है या ईश्वरीय संस्कार है? सिंपल सी बात, कोई भी ऐसी बात से मेरा मन थोड़ा भी अशांत हो जाता है, थोड़ा भी मन जैसे यू नो लाइक खुश नहीं होता, वो फिर ईश्वरीय संस्कार के कर्म, वाणी, दृष्टि, वृत्ति नहीं होंगे। कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द डे आपको एक तृप्ति, एक चलो किसी ने गलत किया, आपने गुस्सा किया, हम सबको मालूम है ये तो होगा ही ना, आपने गलत किया मैंने गुस्सा किया, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी करेगा। चलो गुस्सा किया सही है ना, गुस्सा किया क्योंकि उसने गलत किया मैंने गुस्सा किया, तो अभी मुझे मेरा मन कहता है कि ये तो सही है, गुस्सा तो करना चाहिए, यदि नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा। लेकिन गुस्सा करने के बाद मैं महसूस क्या कर रही हूं, जब मैंने सही किया तो मुझे खुशी होनी चाहिए ना, मुझे तृप्ति होनी चाहिए, माहौल एक बहुत अच्छा फ्रेंडली एक खुशनुमा शांत वाला होना चाहिए। पर ऐसा करने से ये तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना, मेरा मन शांत है ना, मुझे सुकून मिला ना, हमारे संबंध अच्छा हो गया ना, काम बन गया ना, ही माहौल में शांति और एक खुशी का हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यदि ये गुस्सा करना सही है तो ये रिजल्ट मिलना चाहिए, सफलता यही है ना, तो ये तो मिला नहीं हमें, ये कुछ भी नहीं मिला, तो फिर वो सही नहीं है। चलो आपका काम बन भी गया पर बाय देन यू नो आप महसूस किया, आपके डर से उस व्यक्ति ने कर भी लिया, पर आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में श्रद्धा भाव प्यार एक रिस्पेक्ट तो नहीं हुआ, डर ही बैठा। कोई किसी से डरता है तो सही बात नहीं है ना, इसीलिए हमारे आदत हमारे संस्कार हमें बदलना है, क्योंकि आग में बदलाव भी होता है ना, चेंज होता है ना, कोई चीज डाल दो इसका रूप बदल जाता है जैसे हमने सुना। तो ये योग तपस्या हम कर रहे हैं, यदि वो सचमुच वो तपस्या ददक रहा है आग, तो ये परिवर्तन होना जरूरी है। हम कैसा भी, कोई कैसा भी बच्चे हैं, हम मुझे मालूम है परिवार में ऐसी बातें होती है, आपको आवाज से बोलना पड़ता है, यू नो जैसा जोर से गुस्सा भी करना पड़ता आपको लगता है, पर माहौल ऐसा हो, पर हम अपने आप को समझाना है कि मुझे प्यार से ही बोलना है, क्योंकि प्यार से बोलने से बेशक कई बार काम ना भी हो पर आपको एक अंदर से संतुष्टि मिलती है, मैंने प्यार से बोला, इरिटेशन नहीं होगा। एक तो गुस्सा भी करो काम भी हो पर इरिटेशन भी हो फिर क्या फायदा। यह है व्यवहार हमारे, जब मन और वृत्ति हमारी हमारा शुद्ध होगा हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। संस्कार स्वभाव में शुद्धि आएंगे और तपस्या सिर्फ व्यवहार और हमारे संस्कार और मन चित्त के भी नहीं, हमारे शरीर का भी, हमारे आहार और शरीर की भी शुद्धि जरूरी है, हमारा खान पान की शुद्धि, हम क्या खा रहे हैं उसका असर भी तो मन पर पड़ता है ना, कुछ भी खा लो कैसा भी बाबा को याद करके खा लो ये बात नहीं, जो बाबा ने विधि बनाई है बताई है उस विधिवत हमें खाना, जो खाते हैं वो खाना स्वीकार करना चाहिए, होवनहार देवताएं हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है बाबा ने बताई हुई है, और किस स्मृति में रह करके खाना है वो भी बाबा ने बताई हुई है, और शरीर को भी शुद्ध रखना, जैसे हम बाथरूम में जाते हैं लैट्रिन में जाते हैं स्नान भी करना और यू नो पवित्रता का पालन करना, हाँ जी, तो ये भी तो शरीर की शुद्धि है, क्योंकि इसी शरीर में आत्मा रहती है, तो आत्मा की शुद्धि के साथ साथ हमारा शरीर का भी शुद्ध रहना जरूरी है। हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी वृत्ति क्या हो, हाँ जी। और लास्ट बात ये कर्म इंद्रियां हैं हमारे, ये कर्म इंद्रियां जो है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, ये आत्मा के इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। आत्मा तो यहां अंदर बैठी है ना, शरीर के वृक्ति के बीच में बैठी है ना आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति स बिंदु में आत्मा, ये वृक्ति के बीच में बैठी हूं, मुझे आत्मा को कैसा पता बाहर क्या चल रहा। तो ये कर्म इंद्रियां आत्मा को कहती है, आत्मा आंखों से देखती हैं, हैं जी, पढ़ती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, खाती हैं, स्पर्श का भी है, हैं जी। तो ये इससे सुख भी आत्मा ले रही है, दुख भी ले रही है। तो इन कर्मेंद्रियों से हम क्या ले रहे हैं आत्मा के अंदर, इसको कहते हैं रस, इंद्रियों का रस कहते हैं। स्पर्श का भी रस है, सुख है, खाने का भी सुख है, बोलने का भी सुख है, देखने का सुख है, पढ़ने का सुख है, सुनने का सुख है। तो जब हम इंद्रियों से सुख ले रहे हैं तो परमात्म सुख से कई बार हम वंचित होते हैं। और कई बार जैसे आपने कहा कि अच्छा है, अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, ऐसे करने से हमें अच्छा लगता है, ध्यान से सुनेंगे, एक है अच्छा लगना, एक है सही लगना, अंतर है, अंतर है। मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता भाई, चिप्स खाना, आइसक्रीम खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर वो सही है? अभी व्यक्ति डायबिटिक है, उसको शुगर है, उसको कोलेस्ट्रॉल है, उसको और बीमारियां हैं, और खाना अच्छा लग रहा है, पर वो सही है गलत है जी? इसलिए हमें वो नहीं करना है जो हमें अच्छा लग रहा है, हमें वो करना है जो सही है, अंतर है ना? क्योंकि सही करने में ही असली सुख है, अच्छा वाला करने में हमें टेम्पररी मिलेगा, पर परमानेंट जो लंबा समय अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कईयों को ये स्पर्श का बड़ा वो होता है, कहीं भी जाएंगे हाथ फेरेंगे, हाथ उनको अच्छा लगता है, पर ये शरीर से हमें अतीत होने का जो अभ्यास एक तरफ कर रहे हैं, ये शरीर को भूलने का अभ्यास एक तरफ कर रहे हैं, हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास एक तरफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम स्पर्श का सुख भी ले रहे हैं। तो हम अशरीरी होंगे कैसे? वो स्पर्श का सुख हमें याद तो आएगा ना, फिर बार बार उस सुख हमें आत्मा चाहेगा और चाहिए, यू नो। इसलिए हमें इंद्रियों के आकर्षण से जब तपस्या हम करते हैं, ये भी एक प्रकार का आग है, इंद्रियों का सुख भी एक प्रकार का आग है, हमें बार बार आत्मा को ये इंद्रिया खींचती है। इसलिए इंद्रियातीत सुख को प्राप्त करना ही सफल तपस्या की निशानी है। क्या आत्मा इतना बंध जाती है ना, वो बिगर देखे नहीं रह पाएंगे, बिगर बोले रह नहीं पाएंगे, बिगर पढ़े नहीं रह पाएंगे। तो ये जैसे आत्मा बंध जाती है, इसको बंधन कहते हैं, हमने बंधन बना दिया हुआ है। तो जब मैंने खुद अब आत्मा को बांध दिया है तो और बातें तो बहुत आसानी से आत्मा को बांध देती है। बेशक आपके घर में आपको कोई बंधन नहीं होगा, आपके सोसाइटी में कोई बंधन नहीं होंगे, पर हम खुद इंद्रियों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। तो लगा ले, योग लगाते रहें, लगाते रहें, पर मन तो खींचता है ना। योग में भी बैठेंगे, जो देखी हुई चीज, खाया हुआ चीज, बोला हुआ, वो मन आंखों के सामने बार बार मन के आंखों के सामने आता रहेगा। कई बार मन इतना बंध जाता है कि हमको लगता है छोड़ो योग, छोड़ो हम जाकर के वो देखें, छोड़ो योग, छोड़ो हम जाकर के वो करें। हम योग से उठ के भी चले जाते हैं, हमको योग में वो आनंद आत्मा ले नहीं पा रही है, आत्मा वो खींचती है, वो जो आदत है। इसलिए ये ध्यान रहे कि मुझे इन कर्मेंद्रियों से क्या लेना है। जैसे प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, जैसे बाबा ने बताया हुआ पवित्र भोजन शरीर में स्वीकार करना कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसे आंखों से, कान से, मुंह से क्या आत्मा को देना है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये भी हम स्वीकार ही तो कर रहे हैं। आत्मा को इन्फॉर्मेशन हम गलत वाला, आसुरी वाला, अपवित्र वाला इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाबा से अमृत पान करने में रोकता है, वो इन्फॉर्मेशन फिर तो तपस्या में बहुत बड़ी बाधा हो जाती है ना। फिर हम भले बोले हम 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, प्राप्ति क्या? हम बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, बेशक, प्राप्ति क्या? आपका मन का हालत क्या? इसलिए वो स्थिति मन का बना लेना चाहिए कि अच्छा वाला, बुरा वाला, हमें जो निंदा किया, हमें सुख दिया, हमें जो दुख दिया, मुझ आत्मा, मुझ मेरे मन के सामने यदि वो लोग आएंगे, मेरे मन पर कोई उसका असर ना हो, मेरे मन को डिस्टर्ब ना करे, बल्कि ज्ञान स्वरूप होने के कारण, योग स्वरूप होने के कारण वो सारी आत्माएं मेरे सामने आते हैं, तब भी मेरे मन में एक शुभ भावना उन आत्माओं के प्रति रहेगा, मेरे मन में गुस्सा नहीं आएंगे। उनकी याद आते ही जैसे खोलता है ना, खून खोलता है मेरा, जैसे उनको याद आए, उनको याद करे, उनकी नाम भी कोई बोल देना, खून खोलना शुरू हो जाता है, खोलता है ना। कहीं उनका नाम लेने से, याद करने से खून खोलता है कि नहीं खोलता? हाँ या ना? अभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में क्या है, ड्रामा क्या है, ड्रामा क्या है? ड्रामा एक कल्याणकारी है, ड्रामा अच्छा है, ड्रामा सही है, ड्रामा माँ है, बहुत अच्छा। तो क्यों खोल रहे हैं, क्यों खून खोलना क्यों चाहिए फिर? तो फिर कमजोरी किसकी? हाँ, तो आज से आपका खून भी शांत होना चाहिए, ठंडा, ठीक है, होगा? अब घर जाएंगे तो सारा खून खोलने के जो निमित्त है ना, वो सब होने वाला। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, आपको डिस्टर्ब करने वाली सारी बातें तैयार बैठा है। तो अभी आप जाएंगे तो फिर लोग तो कहेंगे आप तो 3 दिन तपस्या करके आए हैं, तो फिर हमारा व्यवहार वैसा ही होगा जैसे यहां आने के पहले था। तो वो कहेंगे अच्छा 3 दिन क्या करके आए आप लोग, इसका कोई फल तो है ही नहीं। पर अब ऐसे परिश्ते के तरह जाना है, एकदम कोई असर ना पड़े, मुस्कुराते रहो, क्योंकि गुस्सा करके भी जो हो गया वो तो हो ही गया, चिल्लाने के बाद भी जो बात हो गई वो तो हो ही गई, तो मन को क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए? तो ये मन को बार बार अपने आप को समझाना चाहिए, बार बार अपने आप को समझाना चाहिए। ऐसे फरिश्ते, ऐसे शांत स्वरूप तपस्वी की तरह आप जाएंगे तो घर में लोगों को लगेगा अच्छा ये तो कोई और गया था, ये तो कोई और आ गया, वो तो दूसरे भट्टी में भी वो खुद भेजेंगे, जाओ जाओ भट्टी करके आओ, हम सारा काम हम संभालेंगे, जाओ जाओ जाओ। हाँ, या तो फिर कहेंगे तो टस के मस नहीं हुए हैं, जैसे गए वैसे आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ टिकट के खर्चे हुए, 3 दिन का टाइम वेस्ट हुआ और एक काम हम आपका कर रहे हैं, हाँ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अब ये सारी बातें हैं, निशानियां भी और विधि भी, बाबा ने सारी बातें मुरली में बताई हुई हैं। हम मुरली का अध्ययन करना, एक तो पढ़ते हैं हम, क्लास में सुनते हैं, पर ध्यान हमेशा एक बात का देना। अब हम कितने भी बिजी हैं, सारे दिन में 10 मिनट प्लीज 10 मिनट निकालना और मुरली को प्लीज अध्ययन करें। इतने सारे हम क्लासेस सुनते हैं, सारा क्लासेस का जो सार है वो मुरली है। हर बात बाबा ने बताई हुई, ऐसे कोई बात नहीं है जो बाबा ने छोड़ी हुई है, उसको अध्ययन कर। आज की मुरली इतनी सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने बताई। सो प्लीज एक बार आप ध्यान से उसको खुद पढ़े, मन से पढ़े, दिल से पढ़े, देखना आपके बुद्धि में और बातों के अलावा जो मनन करते हैं हम सारा दिन वो सोचते हैं, वो खुद ब खुद चला जाएगा। बाबा की बातें याद बार बार आएंगे, वो शक्ति देगा, मन को मजबूत बनाएगा। जब तक हम ज्ञानी, ज्ञान का स्वरूप नहीं बनेंगे, फिर योग लगेगा कैसे? ठीक है, ओके, ओम शांति।